भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव और
इस्कॉन का 50 साल
नहीं नहीं और भी है ना कुछ आविर्भाव तिरुभाव पुरुषोत्तम दास ठाकुर का तिरुभाव है ना दो तिरुभाव और एक आविर्भाव 89 पेज छह जी आनी लो जा जे आनी लो हाँ 60 पेज है पेज नंबर 60 मिल गया। तो देखिए जहाँ पर आचार्य ठाकुर है वहाँ पर हम एक बार बोलेंगे पुरुषोत्तम ठाकुर और दूसरी बार बोलेंगे गौर गोविंद ठाकुर जिनके तिरुभाव हैं उनका नाम बोलेंगे। जी अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर हेना प्रभु को था गिला पुरुषोत्तम ठाकुर हेना प्रभु को था गिला गौर गोविंद ठाकुर हरि बोल हरि
बोल कहाँ मोरा भट जुग कहाँ कबीरा काल को था गिला गोरा न ठहरा पाषाण कोटि भो माथा अनाले पसेबो गौरांग गुणेरा निधि कोथा गेले पाबो से साब संगीरा संगे जे कहिलो बिलास से संग न पाया कदे न रोतम जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर नित गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल
शैल
पुरुषोत्तम दास ठाकुर तेरो भावतिथि महा महोत्सव की, श्री गौर गोविंद स्वामी तेरो भावतिथि महा महोत्सव की। तो ये जो भजन है इसका अर्थ इस प्रकार से है, जिया नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, जो प्रेम धन लेकर के आए कहाँ से, गोलोक धाम से, क्यों लाए, प्रचुर करुणा, प्रचुर करुणा के कारण। हेना प्रभु को था गेला पुरुषोत्तम ठाकुर, तो वो पुरुषोत्तम दास ठाकुर अब कहाँ चले गए। हेना प्रभु को था गेला गौर गोविंद ठाकुर, और गौर गोविंद स्वामी कहाँ चले गए। कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन, कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी है, कहाँ रूप गोस्वामी है, कहाँ सनातन गोस्वामी है, कहाँ दास रघुनाथ पतित है पावन, पतितों को पवित्र करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ है। कहाँ मोरा भट्ट जोग, और मेरे दोनों भट्ट कहाँ है, दोनों भट्ट कौन, गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहाँ है। कहाँ कविराज, कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ है। एक काले कोथा गेला गोरा नटराज, और एक काले यानी अनायास ही कहाँ चले गए, गोर वर्ण के नटराज, नर्तकों के राजा श्री चैतन्य। पाषाण एक कुटिबो माथा, मैं अपने माथे को पत्थर में फोड़ूं, अनले पसीबो या अग्नि में प्रवेश करूं। गोरांगा गुडेरा निधि कोथा गेले पाबो, गुरों के समुद्र गोरांग को किस प्रकार से मैं प्राप्त करूं। शेष सब संगीरा संगे जे कहिलो विलास, तो जितने संगी थे भगवान के साथ उन्होंने विलास किया। शेष संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास, उनका संग ना पा करके नरोत्तम दास रोते हैं। तो ये विरह भजन हम लोग गाते हैं तिरो भाव के अवसर पर। तो ये तिरुभाव किसका है, पुरुषोत्तम दास ठाकुर का, ये चैतन्य महाप्रभु के समकालीन है, चैतन्य महाप्रभु के ही पार्षद हैं श्री पुरुषोत्तम दास। निरंतर नित्यानंद प्रभु के स्मरण एवं सेवा में निमग्न रहते थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर। ये गौर लीला में स्तोत्र कृष्ण नाम के सखा हैं। तो ये बताया गया है कि 12 जो गोपाल थे, जो श्री कृष्ण के विशेष संगी थे, बहुत निकट के संगी थे, वो गौर लीला में श्री चैतन्य के संगी बने। तो ये लिस्ट इसमें बताई गई है कि 12 गोपाल जो कृष्ण की लीला में कौन थे और गौर लीला में वो कौन हुए। तो आप लोग सुनिए और इसकी संख्या भी आप गिनिए। पहली संख्या है श्री दामा सखा। ये 12 गोपाल कैसे हैं, वो VIP हैं कृष्ण बलराम के बहुत निकट के, है ना। तो भगवान के संगी और सखाओं की तो कोई संख्या नहीं, असंख्य है। 12 गोपाल जो है ये कृष्ण और बलदेव के बहुत निकट के हैं। उनमें पहले कौन है, श्री दामा सखा। तो ये जो है गौर लीला में हुए अभिराम गोपाल, ठीक है। फिर दूसरे सुदामा सखा, ये सुदामा सखा वो नहीं है, सुदामा ब्राह्मण नहीं है, ये सुदामा सखा ब्रज के गोपाल है ना, सुदामा सखा। ये गौर लीला में हुए सुंदर आनंद। फिर तीसरे महाबल सखा, ये गौर लीला में हुए कमलाकर पिपलाई। फिर चौथे सुबल सखा, कृष्ण लीला में, गौर लीला में हुए गौरीदास पंडित। फिर पांचवें अर्जुन सखा ब्रज लीला में, ये अर्जुन नहीं है कुरुक्षेत्र के, अर्जुन सखा ये ब्रज के हैं। अर्जुन सखा पांचवें, ये गौर लीला में हुए परमेश्वरी दास ठाकुर। फिर छठवें वसुदामा सखा, किस लीला में, गौर लीला में हुए धनंजय पंडित। फिर सातवें महाबाहु सखा, ये गौर लीला में हुए महेश पंडित। फिर आठवें स्तोक कृष्ण सखा, गौलीला में हुए पुरुषोत्तम दास ठाकुर, है ना, जिनका आज तिरुभाव दिवस है, है ना। इनका आविर्भाव दिवस, अच्छा हाँ आविर्भाव दिवस भी आता है, साल में 2 दिन हम लोग उनको याद करते हैं। तो स्तोक कृष्ण सखा जो है ये ब्रज लीला में है। फिर नवे है लवंग सखा, ये गौलीला में हुए काला कृष्णदास। दसवें दामा सखा, गौर लीला में हुए पुरुषोत्तम नागर। पुरुषोत्तम दास ठाकुर अलग हैं और पुरुषोत्तम नागर अलग हैं, गोरिल्ला पुरुषोत्तम नागर। ग्यारहवें सुबाहु सखा ये गोरिल्ला में हुए, और धारणदत्त, और धारणदत्त ठाकुर भी बोलते हैं, और बारहवें कुसुमासा सखा ये गोरिल्ला में हुए, श्रीधर खोल बेचा श्रीधर। तो बारह गोपाल हैं, उनमें से एक जो आठवीं संख्या के गोपाल हैं इसतो कृष्ण, यही गौर लीला में क्या हुए, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, है ना। स्तोक का अर्थ होता है छोटा, छोटा नमूना, इसको स्तोक बोलते हैं। छोटे साइज में कोई चीज होती है तो स्तोक बोलते हैं। स्तोक कृष्ण का मतलब क्या है कि ये कृष्ण से छोटे हैं, कृष्ण के सखा हैं, और इनकी जो मनोभावना है वो कृष्ण से बिल्कुल मिलती जुलती है। बिल्कुल इस छोटे साइज के कृष्णा, कृष्ण जो है कृष्ण के संगी हैं, है? और कृष्ण के हमेशा साथ रहते हैं, और इनकी जो सेवा होती है वो क्या होती है, कृष्ण के साथ कभी झगड़ा करते हैं, कभी हंसी मजाक करते हैं, कभी खेलते हैं, कभी कुश्ती लड़ते हैं, तो ये सब जो है इनकी सेवा होती है। कृष्ण को कभी हंसाना है, और कभी चढ़ाना भी, हंसी मजाक करना, तो सब जो है ये सेवाएं इन सखाओं की होती हैं। तो यही जो है पुरुषोत्तम दास ठाकुर हैं। और गौर गोविंद स्वामी ये प्रभुपाद के शिष्य थे, जिन्होंने शरीर छोड़ा था 1996 में। तो इनका भी जीवन चरित्र काफ़ी लंबा है, समय तो हमारे पास कम है। तो इनके तुर्भाव के जो समय, जो घटना हुई थी, उसको मैं इसमें से पढ़ के सुनाऊंगा उनकी ही। भक्ति सरस्वती ठाकुर का तो बहुत विस्तृत है, तो फिर बाकी जितना समय बचेगा भक्ति सरस्वती के बारे में। अभी हम दोनों तुर्भाव की चर्चा कर रहे हैं, है ना। तुर्भाव भजन गाए तो तुर्भाव की पहले चर्चा करेंगे। इनके तुर्भाव की जो दिनांक थी ये 9 फरवरी 1996 की है। तिथि के अनुसार आज का दिन है, आज कितनी तारीख है, 28 फरवरी, 28 फरवरी, हाँ आज 28 फरवरी 2016 है। इन तिथि के अनुसार ये जो है 9 फरवरी 1996 को उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, और उस दिन शरीर छोड़ा था जिस दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव। तो दो बड़े वरिष्ठ भक्त आए थे श्री गौर गोविंद स्वामी को देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए आए थे। और गौर गोविंद स्वामी इस समय मायापुर की मीटिंग में थे। इस समय सब जितने अधिकारी हैं, जो मैनेजमेंट के जो भक्त हैं, वो सब मायापुर में होते हैं। तो इस मायापुर की जो मैनेजमेंट की जो मीटिंग थी उसमें ये मायापुर में गए हुए थे, और वैसे भुवनेश्वर में इन्होंने मंदिर बनाया, और भुवनेश्वर को ही हमेशा देखते हैं। तो मायापुर में थे, तो दो जो है वरिष्ठ भक्त इनके पास आए इनका दर्शन करने के लिए। तो उनकी बड़ी इच्छा हुई थी इनसे मिलने की, क्योंकि उन्होंने इनकी किताबें पढ़ी थी, गौर गोविंद स्वामी की कुछ किताबें भी। तो ये सब जो है मतलब एक ऐसी घटना है जैसे कि पहले से निश्चित था, सब कुछ निश्चित था पहले से, इस तरह की घटना हुई। शाम को 6 बजे उनके कमरे में वो प्रविष्ट हुए दो भक्त, और विनम्रता पूर्वक पूछने लगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में क्यों रहे। उनका ये प्रश्न था कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में क्यों रहे। तो ये जो है आनंद से हंसने लगे, महाराज हंसने लगे और समझाने लगे महाप्रभु की लीला, जो बड़ी रहस्यपूर्ण लीला है। और उन्होंने जो है समझाया राधा कृष्ण का कितना विरह था जब वो विलग हो गए, वृंदावन से कृष्ण जब चले गए तो राधा कृष्ण को कितना विरह का अनुभव हुआ। और फिर उन्होंने बड़ी अद्भुत लीला सुनाई राधा कृष्ण की और उनकी विरह की लीला, और अपने भक्तों जो कमरे में उपस्थित थे उनको बहुत आनंद आया कृष्ण के अमृतमय चरित्रों से। और फिर उन्होंने इस लीला को समाप्त किया जहाँ राधा कृष्ण अंत में मिलित हुए। बहुत लंबे विरह के बाद जब राधा कृष्ण का मिलन हुआ और उन्होंने ये वर्णन किया कि कृष्ण को जो है कैसा सुख प्राप्त हुआ राधा रानी को देख करके, और उनका जो है वो रूप मतलब कैसा हो गया कि उनकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी गोल हो गई, वही जगन्नाथ का रूप उनका बन गया। और फिर उनकी जो आवाज है वो रुंध गई, फिर वो रुंधे हुए गले से बोले कि कृष्ण की जो नेत्र हैं वो राधा रानी के नेत्रों से मिले और नेत्रों से उनका मिलन हुआ। और फिर राधा कृष्ण के प्रेम में इतने वो डूब गए कि उन्होंने हाथ जोड़ करके अब क्षमा मांगी कि अब आप लोग मुझे क्षमा करिए कि अब मैं बोल नहीं सकता। और फिर बहुत मुश्किल से कुछ उनके मुख से जो शब्द निकले वो शब्द थे कीर्तन कीर्तन। अब वो जो है कुछ नहीं बोले, बहुत मुश्किल से सुनाई पड़ रहा था, वो बोल रहे थे कीर्तन कीर्तन। सभी भक्तों ने कीर्तन शुरू किया और ये जो महाराज हैं वो अपने बिस्तर में जो है पीठ के बल लेट गए और बहुत धीरे धीरे और बड़ी गहरी श्वास ले रहे थे। एक सेवक ने इनके गोपाल जी का चित्र इनके पास रखा और प्रेम पूर्वक उस गोपाल जी के चित्र को देखते हुए श्री गौर गोविंद स्वामी ने अंतिम आवाज दी गोपाल, और उन्होंने भगवान के धाम में प्रवेश किया, चले गए। कितना आश्चर्य है। तो इस तरह से इन्होंने जो है अपना शरीर छोड़ा। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में हम सुनेंगे, जितना समय होगा उतना हम चर्चा कर सकते हैं। कितना समय, 8:30 बजे समाप्त करते हैं, 8:30 बजे तो घड़ी सामने है, मैं उसको देख करके आप लोगों को कुछ सुनाऊंगा इनके विषय में। गौड़ी वैष्णव चरितामृत में से कुछ बातें हैं इनके बारे में। तो सबसे पहली बात यह है कि ये भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के गुरु महाराज हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और इनका आविर्भाव 6 फरवरी 1874 को हुआ था, है ना। अब देखो आज की ही तिथि है लेकिन ये तारीख 6 फरवरी है और इनकी तारीख कितनी थी, 9 फरवरी। 9 फरवरी और सन कौन सा था, 96, है ना, 9 फरवरी सन 96, तिथि वही है, है? लेकिन यही आज की जो तिथि है वो 9 फरवरी सन 96 में 9 फरवरी को थी और 1874 को 6 फरवरी को पड़ी, है ना, और आज 28 फरवरी को, तो तिथि के हिसाब से तारीख बदलती हैं। और इनका जन्म हुआ था श्री क्षेत्र धाम में, श्री क्षेत्र या पुरुषोत्तम क्षेत्र, और कई नाम है, नीलाचल धाम, है ना, जगन्नाथपुरी, है ना, तो ये जो है स्थान है इनके जन्म का। तो इन्होंने जन्म लिया था शिला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र के रूप में। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना की थी, चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की थी कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो कि आपके संदेश को सुरक्षित रख सके और आगे बढ़ाए, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर के समय में श्री चैतन्य का जो संदेश था वो इतना विकृत हो गया था, इतना दूषित हो गया था कि कितने कितने संप्रदाय हैं जो कि अपने को बताते थे हम चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में हैं, और वे चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को उन्होंने सब दूषित कर दिया था और वैष्णव के नाम को ही बदनाम कर दिया, अपने को वैष्णव कह करके वे वैष्णव का नाम ही बदनाम करते थे, तो ऐसे कई अप संप्रदाय भक्तों ने ठाकुर ने ऐसे 13 अप संप्रदायों की सूची बनाई कि लोग वैष्णव नहीं है, वही चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में नहीं है, ये लोग अपने को वैष्णव कहते हैं और चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय का बताते हैं, इस तरह से बदनाम कर रहे हैं। तो भक्तिवर ठाकुर ने बहुत इसमें समाज को जागृत किया इस विषय में, लेकिन इस चैतन्य के संप्रदाय की उन्होंने रक्षा तो की, लेकिन अब चैतन्य संप्रदाय को और आगे कैसे बढ़ाएं, इसके लिए उन्होंने मांगा था एक पुत्र। तो ये जब इनका जब जन्म हुआ था तो जन्म के समय इस बालक की जो नाल थी वो कैसे लिपटी थी, जैसे ब्राह्मण के शरीर में जनेऊ होता है ना, जनेऊ ऐसे होता है, इधर से बाएं कंधे से दाएं पसली की तरफ जाता है ना, तो ऐसी नाल लिपटी थी। कोई बच्चा होता है ऐसा आज तक कभी बच्चा हुआ ऐसा कि नाल इस तरह की लिपटी हो? नहीं, केवल एक ही बच्चा हुआ विश्व के इतिहास में जिसके नाल जो है ऐसी लिपटी है ना, जैसे ब्राह्मण का जनेऊ हो है ना। तो ये संकेत था भक्तों ठाकुर को मिला कि ये भगवान ने ये बालक भेजा है, ऐसा दिव्य बालक भेजा है जो कि श्री चैतन्य के सिद्धांत को सुरक्षित रखेगा और आगे फैलाएगा है ना। तो ये और बाल्यकाल से ही ये शीघ्र वेद विशारद हो गए, इन्होंने भगवद गीता कंठस्थ कर ली और अपने पिता की दार्शनिक कृतियों का आस्वादन किया। तो भक्तों ठाकुर ने भी 100 ग्रंथ लिखे। तो ये जो है अपने घर में भक्तों ठाकुर अपने पिता के ही ग्रंथ पढ़ा करते थे और पाठशाला में पाठशाला की पुस्तक खोलते थे, घर में पाठशाला की पुस्तक कभी नहीं खोलते थे। और पाठशाला में भी सबसे प्रथम आते थे। भगवद गीता 7 वर्ष की अवस्था में उन्होंने पूरी याद कर ली थी और केवल श्लोक याद नहीं किए बल्कि श्लोकों की व्याख्या भी, हर श्लोक की व्याख्या भी वो कर सकते थे 7 वर्ष की अवस्था में है ना। अपने सुविस्तृत ज्ञान के कारण ये जीवंत ज्ञान कोश के नाम से विख्यात हो गए। जीवंत ज्ञान कोश या विश्वकोश भी बोलते हैं ना, एनसाइक्लोपीडिया, जीवंत विश्वकोश है ना। ये इन्होंने जातिवाद तथा गौड़ीय वैष्णववाद से दार्शनिक विचलन के विरुद्ध प्रत्ययकारी प्रचार किया। तो जातिवाद के विरोध में इन्होंने बहुत बड़ा क्रांतिकारी प्रचार किया। तो जातिवाद तो फैला हुआ है, अभी भी है समाज में जातिवाद है ना। तो जातिवाद का मतलब यह है कि भगवान ने गीता में 4 वर्ण बतलाए हैं और 4 वर्ण भगवान बताते हैं, चातुर्वर्ण्यम मयासृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के विभाजन के अनुसार मैंने 4 वर्ण बनाए हैं। तो भगवान ने 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, गुण कर्मों के अनुसार बनाए हैं, जन्म के अनुसार नहीं बनाए। लेकिन समाज में जो रूढ़ियाँ होती हैं उसी प्रकार की होती हैं कि ब्राह्मण का जो लड़का है वो ब्राह्मण माना जाएगा, क्षत्रिय का लड़का है वो क्षत्रिय माना जाएगा। तो ये जो है ये शास्त्र के अनुसार नहीं है। लेकिन ये जातिवाद ये होता क्या है कि जहाँ कोई बहुत योग्य नेता ना हो तो सामान्य जनता के पास इतनी बुद्धि नहीं होती है कि वो निर्णय करे कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र। तो इसलिए बस यही एक रूढ़ी बन जाती है कि भाई ब्राह्मण का लड़का है तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय का लड़का है तो क्षत्रिय है, वैश्य का लड़का वैश्य, शूद्र का लड़का शूद्र है। तो इस तरह की रूढ़ी ये स्वाभाविक है बन जाती है। तो इसके विरुद्ध है इन्होंने क्रांतिकारी प्रचार किया और उस समय इन्होंने बहुत से जो ब्राह्मण परिवार में पैदा नहीं हुए थे उनको ब्राह्मण दीक्षा दी, ब्राह्मण बनाया और इससे स्मार्त ब्राह्मण जो कि जिनका सिद्धांत क्या था कि ब्राह्मण के परिवार में जो पैदा है वही ब्राह्मण, तो उनकी फिर जो है उनका फिर महत्व घट रहा था, उनका महत्व घट रहा था हा? क्योंकि वो कहते हम तो ब्राह्मण के वंश में पैदा हुए इसलिए हम ब्राह्मण हैं। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत से लोगों को जो ब्राह्मण परिवार में नहीं पैदा हुए थे उनको ब्राह्मण दीक्षा दी, ब्राह्मण घोषित किया, तो इससे उनका बहुत महत्व घटा। तो इस कारण से वे इतने अधिक इनसे ईर्ष्यालु हो गए थे कि पुलिस को जो है उन्होंने 25,000 रुपए की रिश्वत दे करके उनको कहा कि आप लोग अपना बिल्कुल मुंह बंद रखना, हम इनको जहर खिला करके मार डालना चाहते हैं। सोचिए पुलिस वालों को 25,000 रुपए, और समय के 25,000 इस समय के कितने होंगे आप सोचिए, 25 लाख, 25 लाख से भी ज्यादा होंगे। 1874 को इनका जन्म हुआ था ना, है ना, 100 साल 1974 नहीं 100 साल से ज्यादा। हाँ, तो 100 साल से, हाँ ठीक कह रहे। तो 25,000 तो बहुत बड़ी धनराशि होती है, लेकिन पुलिस वालों ने नहीं लिया, पुलिस वालों ने नहीं लिया, और बल्कि इनको एकांत में बुला करके बताया कि देखिए हम लोग तो करते हैं ये काम, लेकिन एक साधु के लिए हम लोग नहीं करते, हमने मना कर दिया है, आप सावधान रहिए क्योंकि आपको जो है वो भोजन में जहर खिलाना चाहते हैं। और इन्होंने भी इस बात का जो है बहुत ध्यान रखा, गांधी जी की तरह नहीं। गांधी जी को जब पता चल गया था कि प्रार्थना स्थल में वो जाएंगे और उनको गोली मारी जाएगी, लेकिन वो गए, लेकिन ऐसे नहीं है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ऐसा नहीं सोचा कि नहीं नहीं हम तो जाएंगे या भगवान रक्षा करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो भक्त होता है वो भगवान को जो है अपना, ऐसा नहीं सोचता है कि भगवान हमारे नौकर हैं, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हमारे बॉडीगार्ड हैं भगवान, ऐसा नहीं है। तो गांधी जी तो गए प्रार्थना स्थल में और मारे गए, लेकिन ये जो है प्रसाद के नाम पर भी कोई चीज नहीं, अज्ञात व्यक्ति से प्रसाद के नाम पर भी कोई चीज़ नहीं लेते थे, इन्होंने बहुत कठोर नियम बना लिया। इनका जो विश्वसनीय सेवक था वही जो इनको बनाता था वही खाते थे सब, हर व्यक्ति से जो है प्रसाद के नाम पर भी कोई चीज़ नहीं लेते थे, है ना, कि चलो प्रसाद प्रसाद के नाम पर जो कुछ है खा लो, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने शिक्षा दी कि प्रसाद के नाम पर भी अगर कोई चीज़ है, अगर आपको नुकसान कर रही है तो वैसे भी हम उसमें से निकाल देते हैं वो चीज़ें, वो चीज़ नहीं लें जो हालांकि है प्रसाद, लेकिन तो अभी हमें क्या करना चाहिए। तो एक व्यवहारिक शिक्षा इन्होंने दी। तो इन्होंने इस बात का बहुत ध्यान रखा इस विषय में। इन्होंने चारों वैष्णव संप्रदायों के उपदेशों को प्रकाशित कर उन्हें मिलाने का प्रयास किया। चार वैष्णव संप्रदाय, चत्वारा संप्रदायिनः, तो ये बताया गया है कि कलयुग में चार वैष्णव संप्रदाय होते हैं, चार ही प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय हैं। तो इन्होंने चार वैष्णव संप्रदाय, एक तो श्री संप्रदाय जिसे रामानुज संप्रदाय भी कहा जाता है, और दूसरा ब्रह्म संप्रदाय जिसे मध्य संप्रदाय भी कहा जाता है जो हम लोगों का है, और तीसरा रुद्र संप्रदाय जिसे विष्णु स्वामी संप्रदाय भी कहा जाता है, ये तीसरा है, और चौथा कुमार संप्रदाय निम्बार संप्रदाय भी कहा जाता है। तो चार संप्रदाय हैं। तो उन्होंने चारों संप्रदायों के उपदेशों को प्रकाशित कर उनको मिलाने का प्रयास किया कि चार ये वैष्णव संप्रदाय हमारे ही मतलब हमारे ही मतलब पक्ष के हैं, हमारे ही दल के हैं, जो कि मायावादी संप्रदाय से अलग है। मायावादी संप्रदाय का खंडन किया है, मायावाद का खंडन किया है, लेकिन बाकी इन चारों वैष्णव संप्रदायों के जो उपदेश हैं तो उनके यद्यपि अलग अलग नाम हैं, जैसे मध्य संप्रदाय में जो सिद्धांत है वो द्वैतवाद का है, और रामानुज संप्रदाय का जो सिद्धांत है वो विशिष्टाद्वैत का है, और निम्बार्क संप्रदाय का सिद्धांत है द्वैताद्वैत का। और कौन बचा? विष्णु स्वामी, रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, तो उनका सिद्धांत है शुद्धाद्वैत। तो हालांकि अलग अलग ये सिद्धांत हैं, लेकिन इन चारों सिद्धांतों को उन्होंने मिलाने का प्रयास किया कि इनमें कोई अंतर नहीं है, इनमें कोई अंतर नहीं है, कुछ अंतर है थोड़ा बहुत, तो वो जो है केवल व्याख्या की दृष्टि से है, लेकिन तत्व की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, ये चारों वैष्णव संप्रदाय एक ही हैं। वैष्णव सिद्धांत पर अपने निर्भीक व सशक्त प्रवचन के कारण इन्होंने सिंह गुरु नाम अर्जित किया। सिंह गुरु, जैसे सिंह होता है, तो वो जंगल का राजा होता है, और जहाँ वो चलता है तो उससे सब पशु बच के चलते हैं, दूर से चलते हैं, दूर से ही रास्ता छोड़ देते हैं, इसी प्रकार से सिंह गुरु थे। तो सिंह गुरु का सामना होने से बचने के लिए माला मायावती उस गली को पार करने निकल जाते थे। इधर से चल रहे हैं तो उस साइड से चलेंगे, वो सामने अगर आ रहे हैं कि सामना ना हो किसी प्रकार से। इतना भयभीत हो रहे थे, क्योंकि ये जब खंडन करते थे उनके सिद्धांत का, तो उनके पास फिर कोई उत्तर नहीं रहता था, है ना, तो डरते थे उनसे। एक साहसी प्रचारक होने के साथ साथ ये समस्त दिव्य गुणों से विभूषित थे और भगवत प्रेम से परिपूर्ण थे। इन्होंने भारत में 64 गौरी मठ स्थापित किए और बर्मा, इंग्लैंड और जर्मनी में भी केंद्र स्थापित किए। तो तीन स्थानों में भारत के बाहर भी गौरी मठ के केंद्र स्थापित किए और भारत में 64 गौरी मठ स्थापित किए। श्रील सरस्वती ठाकुर ने नवद्वीप के धन लोलुप गोस्वामियों के प्रचंड प्रतिरोध के होते हुए सीधा मायापुर में योगपीठ पर अपने गौरवशाली पिता द्वारा प्रकाशित श्री चैतन्य की प्रकट स्थली को विकसित किया। इन्होंने वहां पर एक मनोरम मंदिर बनवाया। तो इनके पिता जो भक्ति विनोद ठाकुर थे, उन्होंने श्री चैतन्य के जन्म स्थान का खोज किया था। श्री चैतन्य का जो जन्म स्थान है वो मायापुर में लोगों ने अलग अलग घोषित कर दिए थे, और कोई दर्शनार्थी जाए तो वो कहते थे इधर है श्री चैतन्य का जन्म स्थान, तो ये है, इधर दर्शन करो, यहाँ चढ़ाओ, पैसा चढ़ाओ यहाँ, और दूसरी जगह वो जो गोस्वामी लोग थे वो उनको बुलाते यहाँ पर, ये असली जन्म स्थान है, यहाँ पैसा चढ़ाओ। तो जो दर्शनार्थी था वो परेशान हो जाएगी, कितने जन्म स्थान है, एक जन्म स्थान होता है कि कितने जन्म स्थान होते हैं, है ना। तो अपना जो है अपना धंधा वो कर रहे थे इसी तरह से जन्मस्थान घोषित करके, लेकिन उनमें से कोई भी जन्मस्थान सही नहीं था, और भक्तों ने ठाकुर ने एक अलग ही जन्मस्थान घोषित किया जो उस समय मायापुर की जगह मियापुर नाम पड़ गया था, और मुसलमानों की जमीन थी वो, लेकिन मुसलमानों की जमीन होते हुए भी उस जमीन में कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा था, कि मुसलमान भी इतना ध्यान रखते थे कि यहाँ तुलसी के पौधे उगते हैं तो वहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं करते, और वहाँ पर तुलसी के पौधे उगते थे केवल। और भक्तों ठाकुर ने जो है जब वो उस स्थान को घोषित किया है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उस स्थान में योगपीठ बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया, कि कोई दूसरा व्यक्ति जो है अधिकार ना जमाए इस स्थान में। तो श्री चैतन्य का जन्म स्थान अभी जो हमें दिखाई पड़ता है वो बड़ा सुंदर वहाँ जो है मंदिर बन गया है, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ही जो शिष्य परंपरा के जो भक्त हैं वो चला रहे हैं, तो बहुत सुरक्षा की भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उस स्थान की बहुत सुरक्षा की, है ना। और नहीं तो जो है कोई उस स्थान का दुरुपयोग करता। मद्रास, कलकत्ता और कृष्णनगर में स्थित इनके तीन बृहद मृदंग गौरांग महाप्रभु के संदेश का प्रचार प्रसार करने हेतु अगणित पुस्तकों, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों का प्रकाशन करते थे। तो बृहद मृदंग नाम दिया। इनके समय में छपाई का कार्य शुरू हो गया था, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी छपाई की टेक्नोलॉजी इनके समय में शुरू हुई। और उसके पहले क्या होता था, हाथ से ग्रंथ लिखे जाते थे, ताड़ पत्र पर ग्रंथ लिखे जाते थे, है ना। अब इतनी ही किताब अगर हाथ से लिखी जाए, एक तो बड़े बड़े अक्षर होंगे, है ना, कितना कागज लगेगा, है ना, बहुत कागज लगेगा, और हाथ से लिखने में कितना समय लगेगा, कितना परिश्रम लगेगा, और फिर भी एक किताब लिख पाएंगे, बाइंडिंग भी नहीं होती थी, है ना, तो सब लूज पेपर होते थे, कागज में उसको जो है बांध करके रखा जाता था। तो किताबें जो है बहुत मुश्किल था, किसी के पास कोई किताब अगर हो बहुत मुश्किल था, किताब को रखना उठाना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि भारी है, वजनी हो जाता था वो कपड़े की पोटली, और कपड़े में भी अगर पानी आनी पड़ जाए या नमी आ जाए तो सब कागज़ खराब हो जाए, है ना, तो सुरक्षित भी नहीं थी, है ना। लेकिन जिस समय छपाई की टेक्नोलॉजी शुरू हुई है, तो ये ऐसे आचार्य हैं, ये ऐसे आचार्य थे कि जिन्होंने इसका कृष्ण की सेवा में प्रयोग किया। छपाई तो बहुत हो रही है, और छपाई जब शुरू हुई थी तो किस लिए, इंद्रिय तृप्ति के ही जो समाचार हैं वही छपते थे, इंद्रिय तृप्ति के ही समाचारों को छापने के लिए टेक्नोलॉजी आई थी। लेकिन इन्होंने इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया भगवान की सेवा में, ऐसे नहीं है साधु, ऐसे साधु नहीं, नहीं नहीं हम ये टेक्नोलॉजी को प्रयोग नहीं करेंगे, हम छपी किताबें नहीं पढ़ेंगे, हम तो साधु हैं, हम तो प्राचीन काल की जो परंपरा है उसी के अनुसार वो हाथ के लिखे कागज ही पढ़ेंगे, ये नहीं है। युक्त वैराग्य क्या है, रूप गोस्वामी ने युक्त वैराग्य दिया क्या, कि हर चीज को जितने भी उपाय कृष्ण की सेवा में आप लगा सकते हैं, उन सब उपायों को कृष्ण की सेवा में लगाइए, हर चीज को। तो अगर नई एक टेक्नोलॉजी आई है कि किताबों की छपाई होती है, तो प्राचीन काल में छपाई नहीं होती थी तो कोई छपी किताबें नहीं पढ़ता था, तो आप जो है फिर उसके उसी धर्रे में चले हैं कि नहीं नहीं भाई, हमारी तो परंपरा यही है कि हाथ से लिखी हुई किताबें ही पढ़ेंगे, और भाई हाथ से लिखेंगे किताबें, हम किताबें नहीं छपवाएंगे। तो ये जो है ये फल्गु वैराग्य है, ये फल्गु वैराग्य है कि आप जो है इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कृष्ण की सेवा में नहीं करना चाहते, आपका ये वैराग्य, आप कहेंगे तो हमारा बहुत बड़ा वैराग्य है कि हम ये टेक्नोलॉजी को भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे, लेकिन इस वैराग्य का कोई महत्व तो नहीं है। युक्त वैराग्य क्या है कि कृष्ण की सेवा में अगर लगाई जा सकती है कोई चीज कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, जो कि पहले नहीं ऐसी विधि विकसित हुई थी, और उस विधि का प्रयोग अगर कृष्ण की सेवा में हम लगा सकते हैं जो अभी विकसित हुई है, तो उसको क्यों ना लगाया जाए, है ना। तो छपाई, किताबों की छपाई से जो है एक बार में आप हजारों किताबें छाप सकते हैं, और इतनी हल्की और बाइंडिंग सब, कितनी सुविधा है, और इस तरह से कृष्ण का संदेश आप फैला सकते हैं, तो क्यों ना छपाई का प्रयोग किया जाए कृष्ण की सेवा में, वो माया की सेवा में कितना छपाई का प्रयोग कर रहे हैं, और माया क्या जो है संदेश भिजवा रहे हैं पूरी दुनिया में, है ना, तो हम कृष्ण की सेवा में क्यों ना करें। युक्त वैराग्य, तो उन्होंने छपाई जो प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस है, उसको एक नाम दिया, एक बहुत मतलब ये मतलब बड़ी गहराई की बात है, ये समझने की बात है कि उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को नाम दिया बृहत मृदंग, प्रिंटिंग प्रेस को नाम दिया बृहत मृदंग, है ना। तो हम तो हिंदी में इसको बोलते हैं छापा खाना, या छपाई की मशीन बोलते हैं प्रिंटिंग प्रेस को, लेकिन इन्होंने नाम दिया बृहत मृदंग। बृहत मृदंग का मतलब क्या है, मृदंग एक तो लघु मृदंग होता है जो बजाया जाता है ना, और उसकी आवाज़ जाती है 20 मीटर की दूरी तक या 30 मीटर की दूरी तक जाती है उसकी आवाज़, है ना। और ये जो छपाई की मशीन है, जिसमें पहले जो है लेटर प्रेस होती थी ना, तो लेटर प्रेस में आवाज होती थी खटर खट खट, खटर खट खट, ऐसी आवाज होती थी ना है? तो इसको जो है इन्होंने बृहद मृदंग का नाम दिया। लघु मृदंग में आवाज होती है धिक्तान धिक्तान है? धिक्तान का मतलब क्या है? ये लघु मृदंग जो है जब धिक्तान धिक्तान बोलता है तो इसका अर्थ क्या होता है? धिक का मतलब धिक्कार है, तान माने उनको, किनको धिक्कार है? जो कृष्ण का कीर्तन नहीं करते उनको धिक्कार है। तो धिक्तान धिक्तान, तो इस तरह से निंदा भी जो है ये कृष्ण का गुणगान होता है। कृष्ण के गुणगान का एक तरीका ये भी है कि जो कृष्ण का गुणगान नहीं करते उनकी हम निंदा करते हैं तो उससे भी कृष्ण का गुणगान होता है। और कृष्ण के गुणों की चर्चा करते हैं तो वो तो कृष्ण का गुणगान है ही है, लेकिन दूसरे तरीके का भी कृष्ण का गुणगान होता है कि जो कृष्ण को नहीं मानते हैं उनकी जब निंदा की जाती है तो इससे भी लोगों को पता चलता है कि भाई इसके रास्ते पर हमको नहीं चलना, ये गलत व्यक्ति है। तो ये भी कृष्ण का गुणगान है। तो जो मृदंग है वो कृष्ण का गुणगान करता है ऐसे लोगों की निंदा करके जो कृष्ण का कीर्तन नहीं करते हैं, धिक्तान धिक्तान है। तो ये लघु मृदंग है। और जो बृहद मृदंग है ये भी कृष्ण का गुणगान करता है ना, खटर खट खट। तो ये आवाज जब निकलती है तो इन्होंने ये तीन स्थानों में ये जो प्रिंटिंग प्रेस है ये बृहद मृदंग इसका जो है नाम दिया था, बृहद मृदंग नाम दिया था। तो ये स्थापित किए, तीन बृहद मृदंग स्थापित किए। कहाँ कहाँ पर स्थापित किए? इनके जो है तीन स्थान, हाँ मद्रास कलकत्ता और कृष्णनगर, ये तीन स्थानों पर जो है इन्होंने बृहद मृदंग स्थापित किए। और बृहद मृदंग तो इनका ये कहना है कि इसकी आवाज जो है बहुत दूर तक जाती है, इसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है, क्योंकि ये जो खटर खट खट जो होता है तो लगता है कि ये क्या है, सब डिस्टरबेंस हो रहा है, खटर खट खट क्या हो रहा है, लेकिन इसमें जो है छपाई जो हो रही है वो आध्यात्मिक संदेश है भगवान का है? वो संदेश कहाँ तक जाता है? है हजारों किलोमीटर दूर जाता है ना, कहाँ कहाँ जाएगा हम तो जानते भी नहीं है ना, कितने लोगों के पास जाएगा ये संदेश। तो ये बृहद मृदंग है ना, तो इसको उन्होंने बृहद मृदंग का नाम दिया है ना। तो ये एक ऐसे आचार्य हैं जो कि क्रांतिकारी कार्य करते हैं कि जो रूढ़ियाँ बनी हुई हैं पहले से उनको तोड़ करके कुछ नया जो है सिद्धांत देते हैं और कुछ नई विधि प्रस्तुत करते हैं कृष्ण की सेवा की। तो उन्होंने बृहद मृदंग का नाम दिया। इसी प्रकार से पहले की जो है रूढ़ियाँ थी कि भाई साधु है वो कार में नहीं बैठेगा, क्योंकि पहले हमारे परंपरा के जो आचार्य हैं कभी कार में नहीं बैठे। तो वे कार में क्यों नहीं बैठे? क्योंकि पहले कार थी नहीं, अब कार अगर आ गई है तो साधु क्यों नहीं बैठेगा? किसका का संदेश फैलाने के लिए साधु कार में क्यों नहीं बैठेगा है? वो माया का संदेश फैलाने के लिए कार में बैठ रहे हैं, माया का प्रचार कर रहे हैं, और साधु जो है कृष्ण का संदेश फैलाने के लिए कार में नहीं बैठे, क्यों नहीं बैठेगा है ना। तो वो रूनिया बनी है, तो जब ये कार में बैठ करके गए पहली बार वृंदावन, तो वो साधु लोग जो है जो रूढ़िवादी थे तो वो आ गए, घेर लिया, कार में बैठ करके आए। उनके लिए एक बहुत बड़ा अन्याय हो गया कि साधु होकर के कार में बैठा है। अगर तुम साधु हो तो जो है कार में बैठते नहीं, कार में कैसे बैठे साधु होकर के है? पैदल चलते, पैदल चलो और ज्यादा से ज्यादा बैलगाड़ी में बैठो, बस में नहीं बैठना। तो हमारे पहले के आचार्य लोग बस में नहीं बैठे, बस थी नहीं पहले। तो उनका कहना कि नहीं कोई नया काम शुरू करना ही नहीं है ना। इसी प्रकार से सन्यासी को जो है सिले कपड़े नहीं पहनना है। अब सिले कपड़े अगर नहीं पहनेंगे तो जो है कोई कपड़ा जो है ओढ़ते हैं हवा से, कभी इधर होता है कभी उधर होता है, तो कैसे प्रचार करेंगे, कैसे चलेंगे फिरेंगे, कैसे यात्रा करेंगे हैं? तो सिले कपड़े पहनने से कितनी सुविधा। तो पहले साधु लोग सिले कपड़े नहीं पहनते थे क्योंकि सिलाई की सुविधा नहीं थी इतनी, अब सिलाई की सुविधा इतनी है और बिना हमारे परिश्रम किए, हमारे समय खराब किए, हमें सिले कपड़े मिल रहे हैं, हमें अपना समय खराब नहीं करना पड़ रहा है, तो हम क्यों पहने सिले कपड़े? पहले साधु सिले कपड़े नहीं पहनते थे कि उनको खुद सिलना पड़ता और मैं समय खराब करना पड़ता, तो मैं समय बचाने के लिए उस कपड़े नहीं सिलते थे, बिना सिले कपड़े पहनते थे। अब हमारा बिना समय लगे सिले कपड़े मिलते हैं तो क्यों ना पहने सिले कपड़े? नहीं, हमारे पहले पूर्ववर्ती आचार्यों ने सिले कपड़े पहने नहीं, हम जो है उनके कट्टर अनुयायी हैं, सिले कपड़े नहीं पहनेंगे, है ना। तो माया का जो है संदेश फैलाने के लिए कब सिले कपड़े पहन रहे हैं, और कृष्ण का संदेश फैलाने के लिए हम सिले कपड़े नहीं पहनेंगे? हमें तो सिलना नहीं है, हमारा टाइम थोड़ी खराब हो रहा है, सिले कपड़े मिल रहे हैं तो क्यों ना पहने। तो इस तरह से इन्होंने क्रांतिकारी प्रचार किया। और हाँ, एक बात और भी है कि जब वो लोग उनको पीटने के लिए आए, भक्ति सिंह ठाकुर को पीटने के लिए आए, क्यों? कि पहली बार एक साधु कार में बैठ करके वृंदावन आया, तो बहुत बड़ा मतलब एक अन्याय हो गया कि एक साधु होकर के और वृंदावन में आया कार में बैठ करके, है ना, तो मारने के लिए आए, तो उस समय उन्होंने पुलिस की शरण ली, है ना। ये भी देखा है कि हर चीज को हमें जो है अपनी सुरक्षा में और जो है कृष्ण की सेवा में लगाना है। तो ये सब जो है बातें ऐसी हैं जो बड़ी व्यवहारिक होती हैं। और इनके जो तीन बृहद मृदंग थे, इसमें गौरांग महाप्रभु संदेश का प्रचार प्रसार करने हेतु अगणित पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र प्रकाशित होते थे। जब इनसे प्रश्न किया गया कि नदिया प्रकाश नामक दैनिक आध्यात्मिक समाचार पत्र का प्रकाशन क्यों कर रहे हैं, नदिया प्रकाश नाम का एक आध्यात्मिक जो है समाचार पत्र इन्होंने निकाला था, दैनिक, बहुत मुश्किल है एक समाचार पत्र, आप जानते कितना उसमें भरा होता है, लिखा होता है, कितना सामग्री होती है एक समाचार पत्र की, अगर आप पढ़ें तो पता नहीं 4-5 घंटे कम से कम लग जाएंगे पूरा अखबार पढ़ने में, है कि नहीं, कितना लिखा होता है। और वो तो जो है दुनिया भर के बेकार के सब समाचार होते हैं, है ना, कहीं पर जो है किसी ने किसी की हत्या कर दी, किसी ने किसी बलात्कार किया, किसी ने किसी की चोरी कर दी, ये किया वो किया, ये सब चीज़ें हैं उसमें, और क्या है, जैसे फालतू के समाचार होते हैं। तो लोगों ने इनके पर प्रश्न किया कि आप जो है ये समाचार पत्र जो छाप रहे हैं आध्यात्मिक समाचार, आपको इतनी सामग्री मिलती कहाँ से, रोज आप जो है समाचार पत्र छाप रहे हैं, दैनिक समाचार पत्र छाप रहे हैं, तो आपको इतनी सामग्री मिलेगी कैसे कि आप रोज छापेंगे? तो इन्होंने क्या उत्तर दिया, इन्होंने उत्तर दिया, यदि एक नगण्य शहर में 5 दैनिक समाचार पत्र निकलते हैं, कोई छोटा सा भी शहर है तो उसमें 5-5 समाचार पत्र रोज निकलते हैं, तो हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के असीम दिव्य धाम गोलोक वृंदावन में उनके अविरत नित्य नूतन लीलाओं के विषय में प्रतिक्षण एक समाचार पत्र क्यों नहीं प्रकाशित कर सकते। भगवान के धाम में जो है कितनी लीलाएं हो रही हैं, और इस भौतिक जगत में भी उनकी कितनी लीलाएं हो रही हैं। तो इन्होंने कहा कि भगवान की लीलाएं तो इतनी ज्यादा विस्तृत हैं, यहाँ के सब दूषित समाचार है, चेतना दूषित होती है, है ना, तो भगवान की लीलाएं कितनी हैं जो हो रही हैं, है ना। लेकिन ऐसा साहस कौन कर सकता है, इतना साहस कौन कर सकता है इस बात को कहने का, जो देख रहा हो वही कर सकता है ना। तो ये देखते थे भगवान की लीलाएं, क्योंकि जो शास्त्रों में लिखी हुई हैं तो उतना ही ज्ञान होता है हम लोगों को भगवान की लीलाओं का, है ना। लेकिन जो प्रतिदिन हो रही हैं भगवान की लीलाएं कैसे हो रही हैं, तो उनके विषय में कौन कह सकता है जब तक कि वो ना स्वयं देखे। तो भक्ति सिद्धांत चतुर्थी ठाकुर भगवान की लीलाएं देखते थे, तभी उन्होंने ऐसा कहा। अपने पिता की रचनाओं के तहत इन्होंने अनेक प्रामाणिक शास्त्र भी प्रकाशित किए, भगवद्गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, हाँ, तो ये जो है ग्रंथ हैं, इन्होंने भी जो है टीकाएं लिखी, इन ग्रंथों की टीकाएं लिखी हैं और जो है प्रकाशित किए, अपने पिता के ग्रंथों को भी प्रकाशित किया। भक्तिराव ठाकुर ने 100 ग्रंथ लिखे थे, लेकिन वो उन्होंने छपाए नहीं थे, क्योंकि वो लिखने में इतने व्यस्त थे कि वे छपा नहीं पाए। वे छपाने में बहुत परिश्रम है, क्योंकि उनकी सब जो है एक बार जो प्रूफ आता है तो उसको फिर चेक करना है, और एक एक उसका शब्द है चेक करना होता है। तो भक्तिराव ठाकुर के पास इतना समय नहीं था, क्योंकि वो अपने जीवन काल में 100 ग्रंथ लिखे। तो लिखे कैसे? हाथ से तो लिखना ही पड़ता है, शुरू में हर व्यक्ति को हाथ से लिखना पड़ता है, तो उन्होंने लिखे थे। इन्होंने अपने पिता के सब ग्रंथों को प्रकाशित किया, अपने बृहद मृदंग में सब प्रकाशित किया। इसके अलावा और भी ग्रंथ इन्होंने प्रकाशित किए, पहले भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ये सब हाथ से लिखे हुए होते थे। और जो श्रीमद् भागवत है, कितना बड़ा पुलिंदा होगा ना, हाथ से अगर लिखें ना, अभी तो सोच नहीं सकते। आपसे कहा जाए श्रीमद् भागवत हाथ से लिखकर, हाथ से लिखो, भगवद गीता यथारूप हाथ से लिख करके दो, तो आप सोचोगे कि इतनी बड़ी सजा सोच नहीं सकते कभी, इतनी बड़ी सजा आपको मिल गई कि पूरी गीता हाथ से लिख करके दो, भगवद गीता यथारूप। तो उस समय हाथ से लिखी जाती है, इन्होंने जो है छपवाए, प्रकाशित किया, चैतन्य भागवत प्रकाशित किया, चैतन्य मंगल प्रकाशित किया, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, प्रेम भक्ति चंद्रिका और इनका प्रिय ग्रंथ चैतन्य चरितामृत, ये सब जो है इन्होंने प्रकाशित किए। तो इनके बहुत बड़े बड़े ये जो है योगदान हैं, जो कि वैष्णव समाज में इन्होंने दिए, और भक्तिराव ठाकुर का जो है इन्होंने कार्य आगे बढ़ाया। भक्तिराव ठाकुर जैसे पुत्र को चाहते थे कि उनकी क्षमता नहीं है, लेकिन उनको ऐसा पुत्र चाहिए जिसके अंदर ऐसी क्षमता हो जो कि इस कार्य को आगे बढ़ाए, तो उन्होंने ये कार्य आगे बढ़ाया। और प्रभुपाद को भी इन्होंने यही आदेश दिया था कि जब भी तुम्हें धन मिले तो किताबें छापना। तो प्रभुपाद को जो इन्होंने आदेश दिया था वो प्रभुपाद ने हमेशा अपने दिल और दिमाग में रखा, और हमेशा अपने शिष्यों को ये शिकायत करते रहते थे, हमेशा प्रभुपाद शिकायत करते रहते हैं कि तुम लोग मेरी किताबों का वितरण नहीं करते हो। और शिष्य लोग जो है प्रभुपाद की इस चिंता को देख करके वो चिंतित होते थे, और क्या तरकीब हो सकती है किताबों को वितरित करने की, वो अपना दिमाग हमेशा लगाते रहते थे। और फिर उन्होंने नई नई तरकीबें विकसित की प्रभुपाद की पुस्तकों को वितरित करने की, क्योंकि प्रभुपाद की पुस्तकें जब वितरित होंगी तभी तो और छपेंगी। तो इस तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ही आदेश पर श्री प्रभुपाद ने इतनी पुस्तकें लिखी, और उनका जो है केवल लेखन कार्य ही नहीं बल्कि उनकी छपाई और उनका वितरण भी कराया। और प्रभुपाद की फिर प्रभुपाद की ही शिष्य परंपरा में और उनके जो शिष्य लोग हैं वो उस कार्य को और आगे बढ़ा रहे और तेजी से फैला रहे हैं। तो एक कार्य जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ही था, उन्होंने सबसे पहले साहस किया स्वयं अपनी प्रेस खोलने का, मंदिर में ही जो है उन्होंने प्रेस स्थापित की, अर्चा विग्रहों के सामने प्रेस में जो है आवाज होगी, छपाई की आवाज होगी, तो सब लोग सोचते थे कि देखो भगवान के अर्चा विग्रह के पास में जो है ये छपाई खाना का जो है ये डिस्टर्बेंस, भगवान को डिस्टर्बेंस, भगवान की डिस्टर्बेंस बना दिया। इनका क्या कहना था कि भगवान को डिस्टर्बेंस नहीं है, कि भगवान इसमें बहुत आनंद ले रहे हैं। जैसे कीर्तन होता है तो खूब जोर जोर से कीर्तन करते हैं तो भगवान के आनंद के लिए करते हैं ना, तो ये जो मृदंग है ये तो लघु मृदंग है, लेकिन जो बृहद मृदंग की आवाज होती है और भगवान सुनते हैं तो उनको और आनंद आता है, क्योंकि वो देखते हैं कि देखो मेरा गुणगान कितनी कितनी दूर दूर तक जा रहा है। भगवान की दृष्टि में तो जो है आगे की भी जो दृष्टि है भगवान के पास, केवल इस समय की दृष्टि नहीं है कि ये जो छप रहा है ये किताब 10 साल के बाद कहाँ कहाँ जाएंगे और कितने लोग पढ़ेंगे, भगवान तो वो भी देख रहे हैं ना, भगवान तो ये देख रहे हैं। तो वर्तमान में ही जो है भगवान भविष्य की भी बात देख रहे हैं, तो भगवान देख रहे हैं कि मेरा गुणगान जो कितना हो रहा है, देखो छपाई हो रही है ना। तो ये दृष्टि इनके पास थी कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, अर्चा विग्रह डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, अर्चा विग्रहों को इससे आनंद हो रहा है कि उनका संदेश जो है छप रहा है और कितने कितने लोगों के पास जाएगा, कितने कितने लोग इसका लाभ उठाएंगे, है ना। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत लाभदायक है, अगर इसका सदुपयोग किया जाए तो बहुत लाभदायक है। यही टेक्नोलॉजी इसका दुरुपयोग किया जाए तो ये सीधे नरक ले जाएंगे और लोग नरक में जा रहे हैं, नरक जाने का बहुत तेज रफ्तार है, बहुत तेज रफ्तार में नरक ले जाती है टेक्नोलॉजी। वही टेक्नोलॉजी बहुत तेज रफ्तार में वैकुंठ भी ले जाती है, केवल दिशा बदलनी, थोड़ी सी दिशा आपने उल्टी कर दी तो नरक की ओर ले जाती है बहुत तेज रफ्तार, और थोड़ी सी दिशा आपने सीधी कर दी तो बहुत तेज रफ्तार में कहाँ ले जाती है, वैकुंठ ले जाती है। तो इन्होंने वो दिशा दी जो टेक्नोलॉजी नरक की दिशा में ले जा रही है, उसी टेक्नोलॉजी को इन्होंने वैकुंठ की दिशा में इसको जो है बनाया है, ठीक है, केवल दिशा दी। तो टेक्नोलॉजी तो भाई है, टेक्नोलॉजी के पास कोई दिशा नहीं है, दिशा तो आप जो देंगे उसी दिशा में जाएगी, तो दिशा देने वाले कौन है, ये ना। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है ये बात कर सकते हैं या मैं प्रश्न करूं। हाँ जी, हाँ खटर खट का मीनिंग कुछ विचार नहीं किया मैंने, कुछ हो सकता है। हाँ जी, हाँ आप
लेकिन भगवदगीता में इतने गहरे रहस्य है कि वो भगवदगीता यथारूप ही पर्याप्त नहीं है समझने के लिए, मतलब भगवान ने जो कहा बहुत अच्छी व्याख्या की, और उसी तरह प्रभु जी भी बहुत परिश्रम से ग्रंथ लिखे, प्रभु जी ने हाथ से लिखे पूरे ग्रंथ, और प्रभु जी की लेख लिखती अच्छी है कि अगर प्रभु जी एक बार लिख देते हैं कोई लेख तो फिर से उसमें एक भी गलती नहीं होती, जो प्रूफ लिखने वाला जो दूसरी बार जो टाइपिंग करने वाला है वो कई गलतियां करता है, लेकिन प्रभु जी एक बार लिखते तो प्रभु जी के एक एक लेख में पूरी एक भी गलती नहीं निकलती, तो फिर उसको चेक करने के बाद उसकी दिक्कत के कारण उसकी गलत टाइपिंग के कारण 2-3 बार चेक करके रखना, प्रभु जी भी बहुत मतलब उच्च कोटि के मतलब ऐसे ही है वैष्णव है, जैसे चर्चा प्रभु जी समझा रहे के बारे में, तो हमारी परंपरा में मतलब ऐसे प्रभु जी के जैसे आचार्य हमारा बहुत बड़ा
श्रीलभद्री सिद्धांत चौधरी ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्री गौर गोविंद स्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।